अध्याय सुनवाई का कमरा, जब सच की आवाज खुद बन जाए। स्थान, स्टोर मैनेजर का केबिन, तीसरी मंजिल। समय, शाम 4:45 PM। मॉल की हवा में उस दिन कुछ अलग सी गर्मी थी। कांच की दीवारों से उतरती धूप अब धूल में बदल चुकी थी और काम से थकी रहना अपनी डेस्क पर वर्क रिपोर्ट लिख रही थी। तभी पीछे से धीमे लेकिन तनाव भरे स्वर में काजल ने आकर कहा, मैम, आपको मैनेजर सर ने बुलाया है अभी। रैना ने नजरें उठाई, चेहरे पर कोई सवाल नहीं लेकिन आंखों में सन्नाटा था। ठीक है, उसने कहा और पानी की आखिरी घूंट लेकर उठ खड़ी हुई। स्थान, मैनेजर केबिन। मैनेजर पहले से अपनी कुर्सी पर बैठा था, चेहरा सख्त, होठों पर झुंझलाहट की रेखा और उंगलियों में घूमता हुआ पेन। रैना ने दरवाजा खटखटाकर भीतर कदम रखा। बैठो, उसने बिना देखे कहा। रैना ने कुर्सी खींची लेकिन बैठी नहीं। उसकी आदत थी, जब तक बात ना हो तब तक जगह नहीं ली जाती। एक कंप्लेंट आई है, मैनेजर ने कागज पलटते हुए कहा। आज दोपहर सेक्शन में एक कस्टमर से तुम्हारा व्यवहार असभ्य और अपमानजनक बताया गया है। वो आदमी बिना कुछ खरीदे चला गया और ऊपर से ये तक कहा गया है कि तुमने उससे घमंड में बात की। रैना की भौहें हल्की सी सिकी लेकिन उसका चेहरा शांत था। और ये बात किसने बताई, उसने धीमे स्वर में पूछा। सेक्शन की ही एक लड़की, नाम नहीं लेना चाहता लेकिन वो साफ कह रही है कि तुमने कस्टमर से बात करते वक्त टोन कंट्रोल नहीं किया। बताओ, क्या जरूरत थी इस तरह रिएक्ट करने की? रैना अब सीधे उसकी आंखों में देख रही थी। सर, क्या उसने ये भी बताया कि वो आदमी क्या बोल रहा था मुझसे? मैनेजर थोड़ा झेप गया लेकिन आवाज नहीं बदली। मुझे फर्क नहीं पड़ता वो क्या बोल रहा था, स्टाफ को हर परिस्थिति को डिप्लोमेटिकली हैंडल करना चाहिए। तुम्हें क्या जरूरत थी टोंट मारने की? रैना अब धीरे से कुर्सी पर बैठ गई लेकिन उसकी आंखों में अब वो चुप्पी नहीं थी जो मैनेजर को चाहिए थी। सर, उसने संयत आवाज में कहा, अगर कोई ग्राहक अंडरगारमेंट लेते वक्त इस तरह के कमेंट करे कि आप जैसा कोई गाइड करे तो शायद फिट भी बेहतर लगे, और जब मैं टालने की कोशिश करूं तो वो फीलिंग्स और आप क्या पहनती हैं जैसे सवालों तक पहुंचे, तब मैं उसे सेल्स नहीं समझती, उसे शोषण कहती हूं। मैनेजर एक पल को चुप हो गया। लेकिन मैंने कोई बदतमीजी नहीं की, रैना ने बीच में ही कहा, मैंने सिर्फ उसकी सीमा याद दिलाई। और सर, अगर कोई मेरी इज्जत के खिलाफ कुछ बोलेगा तो उसे मैं सिर झुकाकर शर्ट नहीं बेचूंगी, ये बात आप अभी अच्छे से जान लीजिए। मैनेजर का चेहरा अब थोड़ा फीका पड़ चुका था लेकिन मैनेजमेंट की भूमिका में वो अब भी अकड़ा हुआ था। फिर भी हमें पब्लिक फीडबैक को नजरअंदाज नहीं कर सकते। अगली बार, रैना अब खड़ी हो चुकी थी, अगर कोई मेरी प्रोफेशनल सीमा को पार करेगा तो मैं उसे सीधे मुंह बात नहीं करूंगी, ये मेरा काम है लेकिन मेरी अस्मिता उससे ऊपर है। मुझे इस नौकरी से ज्यादा अपनी रीढ़ की हड्डी प्यारी है। मैनेजर अब उसकी तरफ देख रहा था, थोड़ा असहज, थोड़ा निरुत्तर। रैना ने धीरे से कुर्सी पीछे सरकाई, दरवाजा खोला और एक पल को मुड़ी। और हाँ, उसने शांत लेकिन गूंजते स्वर में कहा, जो लोग सच जानकर भी रिपोर्ट गलत देते हैं वो खुद अपनी नौकरी को खोखला बना रहे होते हैं, मेरी नहीं। दरवाजा बंद हुआ और सन्नाटा रह गया। 5:15 सेक्शन। रैना वापस अपनी जगह पर लौटी, उसके हाथ अब फिर से डिस्प्ले टेबल पर थे, जैसे कुछ हुआ ही नहीं। लेकिन स्टाफ के कुछ चेहरे अब उसे अलग नजरों से देख रहे थे जिसमें आदर था, डर नहीं। काजल पास आई और धीरे से कहा, मैम, वो लड़की जो गई थी रिपोर्ट करने, शायद वो ही कल आपको इंस्पायरिंग बोल रही थी। रैना मुस्कुराई नहीं, बस एक लंबी सांस ली। तारीफ तब तक सच्ची नहीं होती जब तक वो आपकी पीठ पीछे भी कायम रहे। उसने शर्ट की तह ठीक की और फिर एक ग्राहक की ओर बढ़ गई। रैना जानती थी, लड़ाई सिर्फ पद की नहीं थी, पहचान की थी। और पहचान कभी किसी कुर्सी से नहीं आती, वो आती है उस वक्त से जब आप किसी को ये कहने से डरते नहीं कि मैं सिर झुकाकर नहीं, आंख मिलाकर काम करती हूँ।